नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,280 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेंटर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दे दी है। अपनी तरह की इस पहली योजना का उद्देश्य देश में हर साल 6,000 मैट्रिक टन एकीकृत रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट विनिर्माण शुरू करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट सबसे मजबूत तरह के परमानेंट मैग्नेट में से एक है।
रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, हम सब जानते हैं कि रेयर अर्थ और परमानेंट मैग्नेट ये आज एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर से जुड़ी हुई चीज बन चुके हैं, और इसके साथ तीन और बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें पुणे मेट्रो का एक्सपेंशन है, दूसरा द्वारका जी से कनालोस की डबलिंग का रेलवे लाइन का, और चौथा है बदलापुर से कर्जत थर्ड एंड फोर्थ रेलवे लाइन का।
राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में कहा कि भारत का संविधान देश का राष्ट्रीय महाकाव्य है और इसके प्रावधानों का पालन करना सभी का कर्तव्य है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि संविधान स्वतंत्रता संग्राम में शामिल लाखों देशवासियों के सामूहिक ज्ञान, बलिदान और सपनों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संविधान दिवस पर संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता प्रत्येक नागरिक को एक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करती रहेगी। देश के बाकी हिस्सों के साथ नागालैंड ने भी आज संविधान को अपनाने की याद में संविधान दिवस मनाया। राज्य के विभिन्न विभागों और जिला कार्यालयों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई। आकाशवाणी कोहिमा में डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंजीनियरिंग और कोहिमा के कलेक्टर हेड के रेंगमा ने रेडियो स्टेशन के कर्मचारियों को संविधान में दिए गए मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति संकल्प को दोहराते हुए प्रस्तावना पढ़ने में नेतृत्व किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा और उत्तर प्रदेश की दो दिन की यात्रा पर कल भुवनेश्वर जाएंगी। राष्ट्रपति भुवनेश्वर में ओडिशा विधानसभा सदस्यों को संबोधित करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट के सातवें आरोपी शोएब को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की 10 दिन की हिरासत में भेज दिया है। शोएब को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने एक अन्य संदिग्ध आमिर राशिद अली की हिरासत भी 7 दिन के लिए बढ़ा दी है। जांच से पता चला है कि शोएब ने 10 नवंबर को कार विस्फोट से पहले आतंकी उमर उन नबी को रसद सहायता प्रदान की थी। अभिकरण ने कहा कि विस्फोट के पीछे की पूरी आतंकी साजिश का पता लगाने के लिए गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान की राजकोषीय व्यवस्था की कड़ी आलोचना की है। इसमें वित्तीय प्रबंधन, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता में पुरानी कमजोरियों को उजागर किया गया है। मुंबई में इसराइल के महावाणिज्य दूत यानी रेवाच ने कहा है कि भारत और इसराइल आतंकवाद के साथ भ्रामक आख्यानों का भी सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने वर्षों तक हिंसा झेली है और अब आतंकवाद समर्थक देशों सहित जटिल सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग ने कल पंजाब में शीतलहर और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में कोहरे की संभावना व्यक्त की है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना है। केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज शाम 7 बजे क्षेत्र का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 328 दर्ज किया गया। भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल आम सभा में आज भारत के नाम पर मुहर लगी। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भारत के अहमदाबाद शहर में आयोजित किए जाएंगे। अहमदाबाद के अलावा नाइजीरिया का अबूजा शहर मेजबानी के दौर में शामिल था, लेकिन भारत बाजी मारने में सफल रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।